प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए श्रोता मित्रों का भी जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए यशाया की पुस्तक उसके 56 अध्याय से अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जो कुछ भी आज हम सुनते हैं, सीखते हैं, अपने जीवन में ग्रहण कर सकें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए भी है जो अपने जीवन में निराश, परेशान और चिंताओं में हैं या बीमार अवस्था में हैं। पिताजी, आप उन्हें भी अपनी शांति प्रदान करें। आज इस अध्ययन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम आज अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यशाया की पुस्तक उसके 56 अध्याय से हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे जिसका विषय है भावी राज्य की विशेषताएं, वर्तमान राज्य की विषम परिस्थितियां। मित्रों, यह अध्याय जिस प्रारूप पर है वह पीछे के अद्भुत अध्याय 53 तक जाता है जो परमेश्वर द्वारा अपने पुत्र की क्रूस की बलि के माध्यम से मानव जाति के लिए उपलब्ध उद्धार की गाथा सुनाता है। अब यशाया भविष्यद्वक्ता इसराइल देश की ओर मुड़ता है और अपनी प्रजा से कहता है, इस अध्याय में सीनै पर्वत की ओर पीछे लौटना नहीं परंतु प्रभु राज की ओर विजय यात्रा है। यह अग्रगमन है, पूर्व घटनाओं की तार्किक मोर्चा बंदी है। यह विशेष करके इसराइल के लिए है परंतु अंततः एक वृहद परिदृश्य में वैश्विक लाभ की बात है। यह इसराइल के साथ बांधी परमेश्वर की वाचा पर आधारित है। यह भविष्य में पृथ्वी की आशीषें हैं। उस समय मूसा की व्यवस्था जिसे प्रभु यीशु ने पर्वतीय उपदेश में चरम सीमा पर पहुंचाया, प्रभु राज में लागू की जाएगी। यह उसकी इच्छा और उसकी व्यवस्था होगी। मेरे मित्रों, इस अध्याय में ध्यान का केंद्र घटनाओं की अपेक्षा नैतिकता पर है। यहां भविष्यवाणी की अपेक्षा आचरण पर बल दिया गया है। इसका प्रभाव हमारे आज के आचरण पर भी पड़ना चाहिए। भविष्यवाणी का अध्ययन जिज्ञासा या बौद्धिकता की अपेक्षा पवित्र जीवन के प्रोत्साहन के लिए है। स्मरण रखें कि प्रेरित यूहन्ना ने लिखा है, पहला यूहन्ना के पत्री 3 अध्याय उसके 3 पद में, जो कोई उस पर आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। भविष्यवाणी हमें पवित्रीकरण की आशा प्रदान करती है। यशाया अब प्रभु राज के युग में देख रहा है। प्रभु यीशु राज कर रहा है जैसा हमने कहा। प्रभु यीशु ने मूसा की व्यवस्था को पर्वतीय उपदेश में चरम सीमा पर पहुंचा दिया था जिसके आधार पर मूसा की व्यवस्था का पालन करके उद्धार पाना असंभव है। उदाहरण स्वरूप मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 22 पद में यीशु कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। मेरे प्रियो, इस आधार पर हम में से बहुत कम लोग बच पाएंगे, तब हमारा उद्धार कैसे होगा? हमारे पास एक उद्धारक है जो हमें बचाएगा। उसके लौकिक राज्य में न तो अपहरण होगा, न हत्या होगी, और न ठग विद्या होगी, और न ही कोई व्यभिचार होगा। हम उस युग में महिमा मार्ग और हालेलुया पथ पर चला करेंगे जो यरूशलेम में होंगे। उस युग में पृथ्वी एक सुरक्षित स्थान पर होगी। प्रत्येक जन अपनी दाखलता और अपने अंजीर के वृक्ष के नीचे बैठा करेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक धनवान मनुष्य होगा, सब भूस्वामी होंगे, उन्हें कर नहीं देना पड़ेगा। यह तो बड़े आनंद की बात होगी यदि आप वहां पर होंगे। भावी राज्य की महान विशेषताओं को हम देखेंगे यशाया की पुस्तक 56 अध्याय के 1 पद में, जहां पर लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, न्याय का पालन करो और धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। भविष्यद्वक्ता प्रभु राज की स्थापना की निकट भविष्य में आशा बांधे हुए था। यद्यपि अंतराल की संभावना छिड़ी थी, परंतु वे निकट भविष्य में ही प्रभु की आशा रखे हुए थे, उसके राज्य की आशा रखे हुए थे। उनके लिए उद्धार संपूर्ण देश का था, और पौलुस के मन में भी यही विचार था जब उसने रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 26 पद में कहा, और इस रीति से सारा इसराइल उद्धार पाएगा, जैसा लिखा है, छुड़ाने वाला सियोन से आएगा और अभक्ति को याकूब से दूर करेगा। आने वाले उद्धार की आशा न्याय करने की प्रेरणा थी, जिस प्रकार की प्रभु के पुनः आगमन की आशा हमारे पवित्र जीवन की प्रेरणा है। यशाया 56 उसके 2 पद में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो ऐसा ही करता, और वह आदमी जो इस पर स्थिर रहता है, जो विश्राम दिन को पवित्र मानता और अपवित्र करने से बचा रहता है, और अपने हाथ को सब भांति की बुराई करने से रोकता है। मेरे प्रियो, यह उन मनुष्यों के लिए है जो सप्त अर्थात विश्राम दिन का पालन करते हैं। इस पृथ्वी पर विश्राम दिन उस समय फिर से आएगा जब सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज होगा। अनुग्रह के इस युग में हमें निश्चय ही कहा गया है कुलुसियों के पत्री 2 अध्याय उसके 16 पद में, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या सप्त के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। अतः हम सब सप्त के अधीन नहीं हैं, यह स्पष्ट हो, परंतु प्रभु राज में परमेश्वर इसकी पुनः स्थापना करना चाहता है, क्योंकि व्यवस्था यरूशलेम से निकलेगी। यशाया 56 के 3 पद में लिखा है, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे न कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा, और खोजे भी न कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं। उस युग में अन्य जाति को ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि इसराइल के साथ परमेश्वर की इस विशेष योजना के कारण वे अलग हैं। दूसरी ओर उसे निमंत्रण दिया गया है कि वह आगे बढ़कर आशीषें प्राप्त करे। मूसा के व्यवस्था के अनुसार एक नपुंसक पुरुष को याजकीय सेवा नहीं करने थी, परंतु प्रभु के राज्य में ऐसा कोई रोक नहीं होगी। यशाया 56 उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी न मिटाया जाएगा। ध्यान दीजिए, विकलांग, परदेशी और सब बहिष्कृत जन सबको निमंत्रण दिया गया है कि पुत्र पुत्री होने से अधिक उत्तम स्थान और अनंत सुरक्षा का परमेश्वर का प्रस्ताव स्वीकार कर लें। व्यवस्था ने ऐसा प्रस्ताव नहीं दिया है, वह निस्संदेह प्रभु के राज्य के विषय में ही चर्चा कर रहा है। यशाया 56 के 6 पद में लिखा है, परदेशी भी जो यहोवा के साथ इस इच्छा से मिले हुए हैं कि उसकी सेवा टहल करें और यहोवा के नाम से प्रीति रखें और उसके दास हो जाएं, जितने विश्राम दिन को अपवित्र करने से बचे रहते हैं और मेरी वाचा का पालन करते हैं, परदेशियों को परमेश्वर से प्रेम करने का नया मन दिया जाएगा। यशाया 56:7 में लिखा हुआ है, उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा, उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे, क्योंकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा। प्रभु यीशु ने दूसरी बार मंदिर का शोधन करते समय इसी पद का संदर्भ दिया था। परमेश्वर की आरंभिक इच्छा तो यही थी कि मंदिर सब मनुष्यों के लिए हो, अर्थात सब जातियों, सब भाषाओं और सब वर्गों के लिए, सब परिस्थितियों के लोगों के लिए। परंतु प्रभु यीशु के युग में वे इस उद्देश्य से चूक गए थे। आज कलीसिया भी अपने मंदिर होने के मूल उद्देश्य से चूक गई है। आज कलीसिया एक प्रकार की रंगशाला बन चुकी है। वहां खाना पीना, खेल कूद, बस यही सब कुछ चलता रहता है। परंतु कुछ व्यक्तिक प्रचारक आज भी भटके हुओं को प्रभु के शरण में ला रहे हैं। यशाया 56:8 पद में लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा जो निकाले हुए इसराइलियों को इकट्ठा करने वाला है, उसकी यह वाणी है कि जो इकट्ठे किए गए हैं उनके साथ मैं औरों को भी इकट्ठा करके मिला दूंगा। परमेश्वर के राज्य को विश्वव्यापी होना है और मानव जाति के प्रत्येक परिवार को उसका नागरिक बनना आवश्यक है। परमेश्वर कहता है कि उस युग में वे सबके पीछे जाएंगे। मेरे विचार में मसीह के शरण आने का सबसे महान समय प्रभु राज्य में होगा। हम देखते हैं वर्तमान राज्य की विषम परिस्थितियां। अब हमने भावी राज्य का परिदृश्य देखा है, तो यशाया अपने युग के राज्य के विषम परिस्थितियों पर भी ध्यान देता है। आज हम अपने चारों ओर वैसे ही परिस्थितियों को देखते हैं। यशाया 56:9 पद में लिखा है, हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। अब वह हमारा ध्यान भावी महिमामय राज्य की संकल्पना से हटाकर उस युग की दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करता है। परमेश्वर अन्य जातियों को जंगली एवं खूंखार पशुओं के समान अपने देश में आने दे रहा है और वे उसकी प्रजा को लूट रहे हैं, उनका विनाश कर रहे हैं। अश्शूर तो आ ही चुके थे और अब बेबीलोन आने वाला है, इसके बाद अन्य राष्ट्र आएगा। यदि आपने यरूशलेम की शहरपनाह और विलाप की दीवार को देखा हो तो पाएंगे कि वे विभिन्न युगों के पत्थरों से बनी हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वह नगर बार बार ध्वंस किया गया है। इतिहास से हमें पता चलता है कि यरूशलेम 27 बार ध्वंस किया गया था और आज का यरूशलेम वास्तव में मलबे पर बना हुआ है। यदि आप वहां पहुंचना चाहें जहां प्रभु यीशु चलता था, तो आपको आज की सतह से 30 से 50 फुट नीचे की ओर जाना पड़ेगा, अर्थात खोदना होगा। परमेश्वर ने अन्य जातियों को अनुमति दे दी कि वे इसराइल को रौंदे। क्यों? क्योंकि इसराइल ने उसे बहुत निराश किया था। इस असाधारण पद पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यशाया 56:10 पद में, उसके पहरवे अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते, वे स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। यह उस युग के परमेश्वर के प्रवक्ता, भविष्यद्वक्ताओं और याजकों की दशा है। परमेश्वर ने बैरियों को आने दिया क्योंकि उनके अगुए दुर्बल और अयोग्य थे। वे वास्तव में आंख वाले अंधे थे, वे अज्ञानी थे, वे उन कुत्तों के समान थे जो भौंक नहीं सकते। फिलिपियों के पत्री 3:2 पद में पौलुस कहता है, कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। उसके कहने का अर्थ क्या था? जब वह कहता है कुत्तों से चौकस रहो, उसके कहने का अर्थ यह नहीं कि किसी के कुत्ते के भौंकने से संभल कर चलो या बच कर चलो। वह उन झूठे शिक्षकों और प्रचारकों के बारे में कह रहा है जो परमेश्वर की पूर्ण सुमति का प्रचार नहीं करते। यशाया के युग में प्रत्येक चरवाहे के पास एक कुत्ता होता था जो भेड़ों को चराने में उसकी सहायता करता था। वह कुत्ता रात में सोते समय अत्यधिक चौकन्ना रहता था और यदि कोई जंगली जानवर या चोर आता तो वह भौंकना आरंभ कर देता था। भविष्यद्वक्ता और याजक जिनका उत्तरदायित्व था कि वे परमेश्वर की प्रजा को चेतावनी दें और उन्हें परमेश्वर का वचन सुनाएं, परंतु वे ही परमेश्वर के वचन से अनजान थे। वे उन कुत्तों के समान थे जो संकट के समय भौंकते नहीं हैं। उनके लिए शांत रहने में ही भलाई थी। मेरे विचार में आज की झूठी शिक्षाएं केवल इस कारण प्रबल हुई हैं कि परमेश्वर के सेवकों ने कायरता अपनाई है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में आपको पैरों पर खड़े होना होता है। मैं वर्षों से यही काम कर रहा हूं क्योंकि मैं वचन का प्रचार करता हूं और मुझे अच्छा लगता है। मैं वचन के प्रचार में यथासंभव अच्छा बनना चाहता हूं, परंतु वचन कठोर है और यह पद तो और भी अधिक कठोर है। मंच पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन का खुला प्रचार नहीं करना उस कुत्ते के समान है जो भौंकता नहीं है। यह मैं नहीं, यशाया आत्मा की प्रेरणा से होकर के कहता है। मूक कुत्ता वह है जो परमेश्वर के वचन का प्रचार नहीं करता है। वह सोता रहता है, वह भौंकता नहीं, सुस्त पड़ा रहता है। प्रभु के सेवकों ध्यान से सुनो, पास्टर के लिए अपने कलीसिया को प्रसन्न करना बहुत आसान होता है, परंतु परमेश्वर के वचन दूसरों तक पहुंचाना कठिन होता है। मेरे प्रियो, मैं कई वर्षों से प्रभु के सेवा में हूं और वर्षों से मंच समितियों से पत्र प्राप्त कर रहा हूं जिनमें पास्टर के नाम सुझाने की याचना लिखी होती है। वे उन पत्रों में पास्टरों की आवश्यक योग्यताएं भी लिखते हैं। सबसे पहली योग्यता होती है उसका व्यक्तित्व। उन्हें एक ऐसे मित्र भाव सेवक की आवश्यकता होती है जो सब आयु के लोगों से संपर्क बना सके। वरिष्ठ नागरिक उससे प्रेम करें, युवा वर्ग उससे प्रेम करे। कुछ कलीसियाएं तो परमेश्वर के वचन का शिक्षक मांगती ही नहीं है। यही कारण है कि मंच पर अनेक गूंगे कुत्ते खड़े हो जाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, परंतु यशाया ने भी तो आपको और मुझको यही कहा है। मुझसे पहले भी यही कहा गया है। यशाया 56 उसके 11 पद में लिखा हुआ है, वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। वे मर भूखे कुत्ते हैं। वे अपने प्रजा के कल्याण कार्य की अपेक्षा अपना ही स्वार्थ सिद्ध करते हैं। एक दिन मैं अपने मित्र प्रचारक के साथ दिन का भोजन कर रहा था। उसने मुझसे कहा, आपका रेडियो संदेश कुछ कठोर है। यदि सुनने वाले आपसे रुष्ट होकर आर्थिक सहयोग देना बंद कर दें तो क्या होगा? मैंने कहा, मैं रेडियो कार्यक्रम बंद करके प्रभु को बता दूंगा। यदि वह चाहता है कि मैं उसके वचन का रेडियो प्रसारण करूं तो वह संभालेगा। स्पष्ट बात तो यह है कि वह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं तो उसका वचन ही सुनाऊंगा। हम यशाया 56 उसके 12 पद में पढ़ते हैं, वे कहते हैं, आओ हम दाख मधु ले आएं, आओ मदिरा पीकर छक जाएं। कल का दिन भी तो आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। मेरे प्रियो, प्रजा अपनी दुर्दशा और अपनी विषम परिस्थितियों को शराब में डुबा बैठी है और शराबियों तथा अंधों के समान भविष्य में प्रवेश कर रहे थे। आज अनेक विश्वासी इसी प्रकार का जीवन जी रहे हैं, इसी प्रकार जीवन का सामना भी कर रहे हैं। वे परेशानियों के कारण शराब में डूबे हुए हैं। हमारे वयस्कों और युवाओं में शराब पीने की समस्या है, यहां तक कि बच्चे भी इसमें शामिल हैं। मैंने अपने जीवन में पूर्व की अपेक्षा आज शराब पीने वालों को देखा है। एक बार मैं एक रेलवे स्टेशन के पास था और मेरे पास एक वृद्ध महिला बैठी थी। वह अति प्रिय थी। मैं सोचने लगा कि काश वह मेरी दादी होती। मैंने मन में कहा, निश्चय ही वह शराब नहीं पिएगी। परंतु मैं आश्चर्यचकित रह गया जब उसने शराब का निवेदन किया। इससे स्पष्ट होता है कि वह उसकी आदी थी। मेरे प्रियो, हमारे देश का नैतिक स्तर प्रतिदिन गिरता जा रहा है। आप बड़े महानगरों में जाएं और आप पाएंगे कि इस प्रकार की बातें बढ़ती जा रही है और अधिकांश विश्वासी इस विषय पर कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं। वे तो मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, मीठी मीठी बातों को सुनना चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते कि आप उन्हें वचन सुनाएं। आप संगीत सुनकर तो समस्या में नहीं पड़ेंगे, परंतु वचन का सच्चा प्रचार करके अवश्य ही समस्या में पड़ जाएंगे। परंतु यशाया परमेश्वर का वचन ज्यों का त्यों सुनाता था, और मैं भी ऐसा ही करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को सुने और माने। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी ओर फिरें, आपके जवान आपकी ओर फिरें, उस सत्यता को जानें? यदि हाँ, तो कलीसिया के पासवानों प्रभु का वचन सच्चे रूप में बताएं। माता पिताओं अपने बच्चों को बताएं ताकि वचन उनके जीवन में कार्य करे। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे आशा ही नहीं परंतु पूर्ण विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आप अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किए हैं और आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
ना जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन उसकी अमानत, इस पर ना नाज करना, कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
कल के भरोसे पर ना रहना,
मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। आज ही दिल में मसीह को बसा ले, कर दे ये जीवन उसके हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना।